राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। हरे कृष्णा, श्री नंद महाराज की, श्री कृष्ण बलराम की। आप सब लोगों का नंद बैठक में स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा टर्न कर दो उसको, बस। नंद बैठक नंदगांव का एक उत्कट स्थान है, इंटेंस प्लेस। आपने उस चित्रपट को गौर से देखा क्या? नंद बाबा के गोद में कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं, उनके चरणों को देखा आपने कैसे बैठे? देखा, एक नीला पैर और एक सफेद पैर ऐसा रखा हुआ है। देख लो, यहां से भी देख सकते हैं आपको, है ना? बाबा के दाहिने गोद में कौन बैठे हैं? कृष्णा बैठे हैं। उनका नीला पैर बलदाऊ जी के सफेद पैर से क्रॉस में बैठा हुआ है। बाबा की लेफ्ट गोद में बलराम भैया बैठे हुए हैं। तो ये कहानी टेर पदंग के कहानी से मिलती जुलती, आगे बढ़ने वाली कहानियां। टेर कदम में फिर वो मुरली बजाते हैं, सब गैयाओं को इकट्ठा करते हैं और गीत गाते 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 जब आते हैं, जब टेर कदम पहुंचते हैं ना, तो टेर कदम पहुंचते ही ऊपर नंद भवन में पता चलता है कि आ गए हैं। अभी वो ऊपर सबसे ऊंचे झरोखे में जाएंगे तो उनको टेर कदम दिखाई पड़ता है वहाँ से। तो टेर कदम पर बैठ कर जब मुरली बज रही है तो नंद भवन में उसका पता चलता है कि अभी आ गए हैं। तो मैंने कहा था आपको कि दिन भर यशोदा माई आंखों में आंसू लेकर दूर टपकते हुए स्तनों से इंतजार करती रहती है, और आखिर में सूरज ढलने को आता है और आखिर में मुरली सुनाई पड़ती है, और वो दूर से सुनाई पड़ने वाली मुरली पास पास आने लगती है। तो उनको रहा नहीं जाता है कि बालक आएगा पर्वत के नीचे, फिर बालक खुद ऊपर चढ़ेगा, तब तक हम वेट करेंगे, तो इनको ये सहन नहीं होता है। तुरंत सब स्वागत की तैयारियां करके, थालियां लेके, दीपक लेकर, मिठाइयां लेकर सब नीचे आ जाते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पर आकर कृष्ण का स्वागत करते हैं। तो ये ना आतुरता का स्थान है, यहाँ पर आतुरता इतनी है कि वो वहाँ पर बैठ नहीं पाते, दे कैनॉट सिट देयर। और जैसे ही यहाँ पर आते ना, तुरंत दोनों भैया भाग कर बाबा की गोद में जाते हैं। और झट आपको मालूम है ना बालक कैसे आराम से आके गोद में बैठते हैं, आराम से आके बैठते हैं, ऐसा छलांग लगाते हैं ना जैसे फुटबॉल में गोल मारते हैं ना गोल, ऐसा लास्ट में ऐसे धाड़ करके आके बैठ जाते हैं। और दोनों एक साथ बोलना आरंभ करते हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये बता रहा है, वो भी बता रहा है, डबल डबल बता रहे हैं। और दोनों ही कर बता नहीं, ग्वाल बाल भी बता रहे हैं एक साथ में। तो नंद बाबा की पोजीशन कैसी है, फोटो में तो एक ही जगह देख रहे हैं लेकिन एक्चुअल पोजीशन कैसी है, इधर देख रहे, 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 ये बोल रहे थे उसको देख रहे, ये बोल रहे उसको देख रहे। इस तरह से यहाँ पर पूरा बहुत समय तक का उनका वर्णन चलता है। और फिर ग्वाल वालों का भी कुछ उत्साह कम नहीं है, उनको भी नंद बाबा को, यशोदा मैया को सब बताना है, क्या हुआ आज, नंद बाबा ने, कन्हैया ने क्या किया आज, वो पूरा वर्णन सुनाना है उनको यहाँ पर। तो दोनों बताते हैं, फिर दोनों जब संतुष्ट हो जाते हैं तो ग्वाल वाल अपने घर चले जाते हैं, और फिर कृष्ण बलराम को लेकर नंद बाबा अपने घर चले जाते हैं। ऐसा ही सुंदर स्थान है। तो नंद बाबा के चेहरे का भाव देखिए आप, कितना वात्सल्य से भरा हुआ है। वात्सल्य के रैंकिंग में नंबर वन कौन है, यशोदा मई। नंबर टू कौन है, नहीं प्रभावती, और जो बड़ी गोपियाँ हैं ना वो उपनंद बाबा की पत्नी है, अभिनंद की पत्नी है, सबके नाम है अलग, तुंगी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो वो सारे पत्नियाँ जो है वो उसके नंबर टू पे हैं, और नंबर थ्री पे नंद बाबा है, और नंबर चार पे देवकी आती है, नंबर पाँच पे वसुदेव आते हैं, उसके आगे फिर कुंती वगैरह लोगों का नंबर लगता है। और पहले जितने भी लोग हैं वो सब माधुर्य ऐश्वर्य में हैं, माधुर्य वात्सल्य में है, मतलब उस वात्सल्य में ऐश्वर्य का लवलेश नहीं है, ये नॉलेज नहीं है कि कृष्ण भगवान है। कुंती को पता है कृष्ण भगवान है, वात्सल्य प्रेम है लेकिन पता है उसको ये भगवान है। देवकी को भी पता है कि ये भगवान है, वसुदेव को भी पता है ये भगवान है, लेकिन फिर भी पिताजी का प्रेम है, माता जी का प्रेम है। तो ऐसे नंद बाबा कि मैं आपको एक, मैंने सोचा कि आपको उद्धव क्यारी में नहीं लेके जा रहा हूँ, तो यहीं पर उद्धव क्यारी की कहानी बता देता हूँ कि नंद बाबा का प्रेम क्या है कृष्ण भगवान के लिए। अभी मैं बैठा हूँ और आप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोए और मैं जगा रहा हूँ, ये कंडीशन है मेरी। तो मैं तो कॉट पे बैठा हूँ, आप तो कुर्सी पे बैठे हैं, मैं जब चाहे सो सकता हूँ आराम से एकदम बढ़िया से। तो अगर आप वादा करते हो कि आप जगोगे तो बताऊंगा मैं कहानी, बोलो सब लोग, आप जग गए सब लोग, कुछ देर के लिए क्यों ना हो जग गए। तो कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। वक्रूर जी आए यहां से, हाँ, और ले गए कृष्ण बलराम को। गोपियों ने बहुत जिद किया, फिर मान गई, चले गए भगवान। अक्रूर जी को दर्शन कराया वैकुंठ का, इसके आगे वैकुंठ शुरू होता है, यहाँ तक वृंदावन था, और चले गए। फिर उन्होंने क्या क्या किया पता है आपको, क्या किया मथुरा में पहले, सबसे पहले अभी देखो मजेदार कहानी देखो। हाँ, ये ब्रजवासी एंगल में जब हम लोग भागवत सुनते हैं ना तो वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। अभी ये सब ग्वाल बाल गए ना, अपना ग्वाल बाल भी थे, नंद बाबा भी थे, और कृष्ण बलराम भी गए उनके भी साथ में। पहले अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम गए, फिर नंद बाबा और ग्वालवाल भी गए। अरे हम भी धनु युद्ध को देखे आते ना, तो ये सब लोग गांव का शहर अपना कपड़ा पहन के गए थे ना, गांव का ड्रेस। तो शहर में गए ना तो राम को संकोच होता है, अरे कन्हैया क्या शहर में आए और गांव के कपड़े लेके घूम रहे, देखो ठाट से घूम रहे सब लोग, कोई नए कपड़े दिलवा दे। तो वहां पर उनको वो मिलता है रंगकार, ये हमको समझना थोड़ा ज़रूरी है। एक होता है धोबी जो ना कपड़े धोता है, और एक होता है रंगकर्मी, वो ना नए कपड़े का रंग का फिक्स करता है, पता है आपको। न्यू क्लोथ्स, जैसे इवन ब्रजेश्वरी टेल्स मी दैट न्यू क्लोथ्स, आप अगर कलर कपड़े हो तो वो कलर निकल ना जाए, इसलिए उसका कलर फिक्सिंग होता है ना। तो होता है रंगकर्मी, तो रंगकर्मी को मिले, और रंगकर्मी कंस का रंगकर्मी था, और धनुर्यज्ञ के लिए जो कंस ने नए नए कपड़े बनवाए थे उसका रंग फिक्स करने के लिए उसका काम था। तो इसके पास ही पहुंचते हैं और बोलते हैं कि अरे हमारे सारे सखाओं को कपड़े दे दो। तो कहता है अरे गांव से आए गवार लड़कों, उनको पता है तुम क्या मांग रहे हो, कंस के कपड़े हैं, राजा के कपड़े हैं, आए कहां से, गांव से गवार लड़के। तो कृष्ण ने एक चाटा मारा, मर गया वो। तो बच्चों को बोला अभी चुनो, जो चाहे वो चुन लो। तो बच्चों ने सब कपड़े चुन लिए, लेकिन बच्चों ने कहा तो बड़ों को कपड़े हैं। तो सब लोग हंसने लगे ईश्वर को देख के, बोले अच्छे कंस के मथुरा नगरी के रोड को बड़े साफ कर रहे हो आप कपड़ा पहन के। बोले क्या करें अभी कपड़े ही बड़े हैं। बोले कोई दर्जी दिला दे हमें ताकि कपड़े हमारे माप के कर दें, सिला विला के ठीक से ऑल्टर करके। तो दर्जी मिला, और दर्जी ने बड़े प्रेम से सबके कपड़े उनके माप के कर दिए। दर्जी को भगवान ने कृष्ण भक्ति दी, प्रेम भक्ति, वो उद्धार कर लिया उसका प्रेम से। तो दर्जी ने जब देखा सब कपड़े एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग है सबके, बड़ा खुश हो गया। फिर आगे चले, अभी बोले अच्छे अच्छे कपड़े पहने शहर के फर्स्ट क्लास, गले में माला होनी चाहिए बढ़िया, अभी क्या में माला पहनने का आदत नहीं, माला पे सब माला पहन के घूमते हैं। तो फूल वाला मिला, और फूल वाले ना कंस के लिए फूल बना के रखे थे, वो सब मालाएं बच्चों को पहना दिया, कृष्ण बलराम को पहना दिया। तो बालक बड़े खुश हो गए, उसको भी भगवान ने प्रेम भक्ति दे दी आशीर्वाद के रूप में, वो भी धन्य हो गया बेचारा। अभी बालक के कपड़े वस्त्र हो गए बढ़िया, फूलमाला भी आ गई गले में। अरे ठाकुर, अरे लाला कन्हैया, चंदन होना, चंदन, चंदन से आनंद आएगा, ये चंदन से आप देखेंगे ब्रजवासी को, चंदन के बिना रहते नहीं वो, चंदन ऐसा लगा रहता है इधर पूरा ऐसा ऐसा ऐसा, तो चंदन हो जाए चकाचक तो अच्छा हो जाएगा। तो उतने में कुब्जा आई वहाँ से, और वो चंदन और सब उसमें अलग अलग सुंदर वस्त्र केसर डाल के जा रही है कम्स के लिए। तो ये कहते हैं ये हमारे सब दोस्तों को चंदन लगा देना। अभी उसमें बताते हैं आचार्य लोग कि चंदन जो है ना वो कभी भी मजबूत आदमी को देना नहीं चाहिए घिसने के लिए। वो आदमी जो होता है ना कमज़ोर या स्त्रियां, उनको ही देना चाहिए, क्योंकि जोरदार आदमी अगर उसको करेगा ना तो टुकड़े निकलते हैं उसके, और कमज़ोर आदमी धीरे धीरे करेगा ना तो बहुत सुंदर पेस्ट बनती है उसकी। इसलिए ज़्यादा करके स्त्रियाँ ही चंदन की पेस्ट बनाती हैं, तो कोमल हाथों से बनेंगे तो बहुत महीन पेस्ट निकलता है। इसलिए वो कुब्जा को दिया था, क्योंकि कुब्जा कुबड़ी थी, कमज़ोर थी शरीर से। तो जैसे वो आती है ना, भगवान कहते हैं हे सुंदरी क्या तुम हमारे बालकों को चंदन दे सकती हो। तो आचार्य बताते हैं कि सुंदरी क्यों कहा, क्योंकि भगवान उसको सुंदरी बनाने वाले थे कुछ समय के बाद, इसलिए पहले ही सुंदरी बुला लिया उसको। अभी कुब्जा की जो बात है ना, थोड़ा समझना ज़रूरी है हमको। कुब्जा शरीर से कमज़ोर थी, अपाइज थी, कंस की नौकरानी थी, और कंस के लिए चंदन घिसना उसका काम था। और ये मालूम है कहाँ हुई मुलाकात, कंस के महल के सामने हुई मेन रोड पे। अभी वो कंस के महल में प्रवेश करने वाली थी तभी इनको मुलाकात हो गई, और ये कंस के लिए बनाया हुआ चंदन कंस के ही महल के सामने प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर कृष्ण भगवान उनको पूछ रहे हैं दे दो, और उसकी हिम्मत देखो, उसने कंस के महल के दरवाजे के सामने खड़े होकर सबको चंदन लगाया जो कंस के लिए बना था। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि शरीर कमजोर हुआ तो क्या हुआ, मन में हिम्मत होनी चाहिए। जब कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं तो जो भक्त होता है वो किसी से डरता नहीं है, भले वो कंस क्यों ना हो। इसलिए सराहना करते हैं आचार्यगण कुब्जा की, उसकी हिम्मत और धैर्य का। कंस के गेट के सामने, हो सकता है कंस अगर अपने टेरेस पे खड़ा है तो देख भी सकता था उसको, अरे ये मेरी नौकरानी मेरा पगार लेकर मेरा चंदन जो है मेरे शत्रुओं को लगा रही है, ये भी रिस्क था उसके अंदर। फिर भी कुब्जा ने बड़ी हिम्मत के साथ में उसके दरवाजे के सामने कृष्ण बलराम को चंदन से सजाया और सभी ग्वाल वालों को चंदन लगाया। इसलिए आचार्य उसकी हिम्मत को सराहते हैं। हमें भी भक्ति करते हैं, डरना नहीं चाहिए। भक्ति डरपोक लोगों के लिए नहीं होती है। इसलिए अभी जब ही मायापुर में यमुनों ने हमला किया था ना, तभी हमारे सब भक्तों ने भी गन रखना शुरू कर दिया। अभी मायापुर में हमारा पूरा गन स्टोर है, उधर फुल फुल फ्लेज सब हथियार लाठी तलवार सब रखा हुआ है, क्योंकि उस समय इतना बड़ा आतंक हुआ था कि भक्तों के माताओं के वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया था। तब जाकर बंदूक लेके, अगली बार जब हमला किया था टेरेस से सब लोगों को शूट किया उन्होंने ऊपर से, उसके बाद में आक्रमण नहीं हुआ वापस। तो भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हरी बोल रो जी तुना दबी सुनी छे ना, ये सब सही है अच्छा है, लेकिन समय आने पर अर्जुन ने कैसे शस्त्र उठाया कि नहीं, प्रभु तो रामचंद्र शस्त्र उठाया कि नहीं, सब भक्तों ने युद्ध किया हुआ है, कोई डरते नहीं है। तो एक स्त्री होने के नाते, एक अबला होने के नाते भी, एक कमजोर दुबली अबला होने के नाते भी वो बड़ी हिम्मत वाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी ड्रेस हो गया, माला हो गई, चंदन हो गया, उस सज धज के सब लोग चले गए। सबसे पहले भगवान गए धनुषशाला में, जहाँ पर कंस को वो धनुष जो किसने दिया था उसको धनुष, आप आने के पहले मैंने एक लेक्चर पूरा कंस के इतिहास पर दिया पूरी तरह से। तो परशुराम के पास कंस गया था और महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया उसने, तो क्रोध क्रोध से युक्त होकर मैं परशुराम जी जब ध्यान से उठे और क्रोध दे लाल लाल आके लेकर आए, तो उनको बार बार प्रणाम किया कंस ने, प्रदक्षिणा किया। तो कंस ने, कंस को परशुराम ने कहा, हे बंदर के बालक, इतना ही गर्व है अपने सब बल पर, ये ले इस धनुष को उठा के दिखाओ, ये धनुष मुझे शिव जी ने दिया है। और शिव जी को भगवान विष्णु ने त्रिपुरारी का वध करने के लिए खुद का धनुष दिया था, ये वो धनुष है, इसको उठाकर अगर चढ़ाओगे प्रत्यंचा तो मैं समझूंगा कि तुम वीर हो। तो कंस ने उसको एक बार नहीं 100 बार उठाया और 100 बार दोरी चढ़ाई उसके ऊपर, प्रत्यंचा चढ़ाई, और बार बार रणत्कार किया, तो सब ब्रह्मांड हिल गया पूरा, सबको लगा कि प्रलय हो रहा है, सब देवता लोग कांपने लगे, उधर हाथी रोने लगे। तो परशुराम प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ये लो, ये मैं तुम्हें भेंट में दे रहा हूं। लेकिन बाय द वे, इसको कोई तोड़ेगा ना वो आपका वध करेगा, ये भी बता दिया उसको। तो वो धनुषशाला में भगवान गए और भगवान ने उस धनुष को उठाया और तोड़ डाला। इसकी इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि कंस के मन में मृत्यु की घंटा बज गई, क्योंकि लोगों ने बताया कि अरे दो बालक आए, उसमें से एक ने उठाया और तोड़ दिया, उसको समझ गया कि मेरा काल आ गया है मेरे पास अभी। फिर उसने कूल्हे पीड़ को मारा भगवान ने, और उसके दांत तोड़कर एक बलराम भैया और एक कृष्ण भैया लेकर अंदर चले गए। फिर चाणूर मुष्टि के साथ युद्ध हुआ, फिर कूट शल और तोशल के साथ युद्ध हुआ, और सबको भगवान ने मल्ल युद्ध में परास्त करके धराशायी कर दिया। फिर भगवान ने छलांग लगाई और कंस को बाल से खींचा, पूरे अखाड़े में घुमाया बाल से। क्यों बाल से अखाड़े में क्यों घुमाया, पहले मुक्का क्यों मारा? कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, इसलिए उसके बालों को पकड़कर उसको सिंहासन से घसीटकर बहुत सारी सैकड़ों सीढ़ियों से उतार कर पूरे अखाड़े में पूरा सबके सामने घुमाया उसको बाल खींचकर, और फिर एक मुक्का मार के उसका वध कर दिया। उसके बाद वो सीधे गए अपने कारागृह में उधर के मथुरा के, और उन्होंने माता पिता को उग्रसेन को रिहा कर दिया। तब तक वो जेल में थे ना सब लोग। कंस के पिताजी को पहले फ्री किया, फिर माता पिताजी के कैदखाने में गए, उनको भी फ्री कर दिया। फिर वो माता पिता को मिलने गए, तो रिहा करके सब चले गए, उसके बाद में माता पिता को मिलने गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद में जब माता पिता को मिलने गए, यहां से नंद बाबा की कहानी शुरू होती है। ये सब कुछ नंद बाबा की कहानी का प्रस्तावना थी, फॉरवर्ड। तो अभी वो दोनों गए भैया, वसुदेव देवकी के पैर पड़े। उन्होंने कहा, मैया बाबा, हमने आपकी कोई सेवा नहीं किया, सारा बचपन हमने गोकुल में और नंदगांव में गुजारा, अभी हम इतने समय के बाद में आपके पास आए हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है बताइए, जो आपकी इच्छा है वो करेंगे। अभी नंद बाबा भी वहाँ खड़े हैं, उनका क्या विचार था कि अभी इनको बाय बाय करके चला जाना है, अपने कृष्ण को लेकर जाना है। नागवाल वाल भी खड़े, नंद बाबा भी आए हैं, आखिरी स्टेशन है, आखिरी मुलाकात करनी, धनुर्युद्ध हो गया, कंस का वध हो गया, अभी वापस जाना है। तो वो भी वहाँ खड़े हैं, इनके संभाषण को देख रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने प्रणाम किया तो वसुदेव देवकी ने कहा, अभी आप यहीं रहो, क्योंकि हमने तो आपको संस्कार तो किए नहीं, हमारा तो कर्तव्य था संस्कार करना, लेकिन आप तो बचपन से आपने आज्ञा दिया तो हम छोड़ के आए आपको गोकुल में, और कुछ भी संस्कार हमारे हाथ से, हमारा कर्तव्य है, तो हम आपको गुरुकुल भेजना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपके पास ही रहेंगे, कितनी सिंपल बात है। लेकिन वहां पर नंद महाराज के हृदय पर पहाड़ टूट पड़ा, जैसे वज्र टूट पड़ा, बेहोश से हो गए वो सुनकर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये अभी नहीं आएगा मेरे साथ। हाँ, उनको पता नहीं था इस बात का। लेकिन कृष्ण की इच्छा सबसे बड़ी, कृष्ण ने उनको वादा किया कि हम रहेंगे, और फिर बाबा से मिलने आए, और बाबा से मिलने आए, बाबा अभी हम तो यहीं रहेंगे, माता पिता के पास रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी संस्कारों की इच्छा पूरी करेंगे, फिर हम लौट के आएंगे, आप जाइए, हम आएंगे आपसे बाद में। तो जैसे कि धरती सरक गई उनके पैर से। यशोदा को क्या बोलकर लाए थे कि मैं जाऊंगा और उनको लेकर आऊंगा, ऐसा वादा करके गए थे, तो भी क्या करें, ऐसे वो जैसे स्तब्ध, जैसे मूर्ति जैसे हो गए, वो स्तंभ विकार, दुख से इतने व्याकुल हो गए कि उनको वहां से जैसे एक पुतली की तरह हो गए, वो पैर ही नहीं आगे बढ़ रहे उनके। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहां से छोड़ा, महल छोड़ा, बड़ी मुश्किल से चले वो नंदगांव की ओर। इतने धीमे चल रहे थे, इतने धीमे चल रहे थे कि उनको उनको बहुत सारे प्रश्न मन में थे। ये तो खुद दुखी थे, वो खुद का भी होता है ना भावना कि कृष्ण को वापस लेकर अकेले जा रहा हूं मैं छोड़कर। दूसरा बड़ा यक्ष प्रश्न था, यशोदा को क्या बताऊंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, उसके हजारों लाखों प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगा मैं, क्या कहूंगा उनको। अगर आप जगेंगे तो बताऊंगा आगे की कहानी। तो बीच में गांव में रुक गए। अभी वो नंद राजा ना, नंद महाराज है, तो राजा आ गए, राजा आ गए, सब लोग खुश हो गए, उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया। आप सोच सकते हैं, सब उत्सव मना रहे हैं कि राजा आए हैं, और राजा जो आए हैं वो बड़े दुखी हैं। वो क्यों रुके वहां पर, क्योंकि उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए वो रुक गए थे वहां पर, थोड़ा अपने आप को संभालने के लिए, टू रिकनसाइल विद द फैक्ट कि वो नहीं है मेरे साथ कृष्ण। अभी रुक गए, सब उनका सत्कार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं, सबको पता ही चल रहा है कि वो आंख क्यों रो रहे हैं, लेकिन वो कह भी सकते नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, ये बहुत प्राइवेट बात है उनकी, अंदर की बात है, विरह की बात है। एक काम करो, पीछे खड़े हो जाओ, क्या है ना, सामने खड़े, आई कांट गिव लेक्चर लाइक दिस, नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो फिर गौरव, उस गांव का नाम पड़ा गौरव, इतना गौरव किया गया नंद महाराज का, तो गांव का ही नाम पड़ा गौरव। फिर बड़े मुश्किल से वो समारोह समाप्त हो गया और आगे की यात्रा शुरू हो गई। तो यात्रा शुरू हो गई आगे, तो बड़ी मुश्किल से रोते 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 घर पहुंचे। घर पहुंचे तो यशोदा मई बड़ी आतुर है, उनको खबर मिल गई थी नंद महाराज आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं लौट के, तो कृष्ण बलराम भी आते होंगे। तो ओम नया नया मक्खन बनाया, बहुत सारे फूलों की माला बनाई, बहुत मिष्ठान बनाए, संदेश बनाया, सब कुछ तैयारी रोज तक से बन गई। अरे मेरे कन्हुआ बलुआ आ रहे हैं आज, बहुत दिनों के बाद में दर्शन हो रहे हैं। तो वो इतने ऐसे था सो एक्साइटेड कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। नंद बाबा आए, बड़े गंभीर थे, तो उनको पूछा कहाँ है कृष्ण बलराम, कहाँ है, अब तो चिल्ला चिल्ला के मेरे पास में आते, मक्खन चाहिए मक्खन चाहिए, कहाँ पर है? तो कुछ बोल नहीं रहे। तो क्यों नहीं बोल रहे आप, बताओ कहाँ पर है वो, कहीं आते खेलने चले गए, मुझे मिलने, मैया को मिलने नहीं आएंगे, यही कुछ बोल नहीं रहे। तो बार बार खोद को पूछते किधर है किधर है, तो कहते कृष्ण बलराम नहीं आए। मैं जोर से हंस पड़ दिए, बोला अच्छा मजाक कर लेते हो आप, क्योंकि वो कितनी एक्साइटेड है, उनको लग रहा है कि नंद महाराज मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो बाद में कहते हैं मैं आपको विनोद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर पूरा प्रसंग सुनाते हैं उनको कि क्यों नहीं आए वो। जैसे ही वो सुनती है ना ये बात, वो घायल हो जाती है पूरी, एक तरह से बेहोशी हो जाती है। वो तो संभालते हैं उनको, फिर वो खड़ी हो जाती है, उनको बड़ा गुस्सा आता है नंद बाबा के ऊपर, तो कैसे पिताजी हो आप, आपको समझा दे कि आपको नंद बाबू लौट के आना है। कहते मैं कैसे करूं, वसुदेव देवकी के पुत्र है वो, उन्होंने उनको आदेश दिया कि रहो हमारे साथ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बोल सकता हूँ। और उन्होंने, उसने भी आके कहा कि मैं रहना चाहता हूँ, मैं कन्हैया की इच्छा के सामने मैं कैसे बोलूँगा नहीं नहीं तुम नहीं रहोगे यहाँ पर, मेरे साथ चलोगे। उन्होंने कहा मैं जरूर वापस लौट के आऊँगा, इसलिए मैं भी नहीं कुछ कर सका। तो फिर ऐसा उसको गुस्सा आया, उसने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया उनको, कैसे पिताजी हो आप, क्यों नहीं समझाया आपने उनको। तो वो कुछ नहीं बोल रहे, शांति से बैठे हैं, तो उनको और क्रोध आ रहा है, और क्रोध आ रहा है, कुछ सफाई भी नहीं दे रहे हैं। बाद में कहते हैं कि आप ना, आपके अंदर प्रेम ही नहीं है कुछ, अगर आपके अंदर प्रेम होता ना तो आप उसको, उन दोनों को लेके आते इधर। तो भी कुछ नहीं बोल रहे, समझो अभी किसी किसी को आप डांट रहे हो और वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। देखो मैं इतना बोल रहा फिर भी ये पत्थर के साथ खड़ा है, ऐसा लगता है। तो एंड में ना बहुत सारा कुछ बोल देती है वो, बहुत सारा कुछ बोल देती है वो, शांत से सहन लेते हैं। एंड में बोलते हैं कि आपको ना प्रेम ही करना नहीं आता, आपसे अच्छे दशरथ भगवान, दशरथ महाराज, ये देखो राम चले गए जंगल में तो ये शरीर छोड़ दिया उन्होंने, इसको प्रेम कहते हैं। अगर प्रेम किसने किया है, पिता ने, दशरथ ने किया है, वो अपने पुत्र के विरह को सहन नहीं कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो सहन नहीं कर पाए और जीवन त्याग दिया उन्होंने। अब ये एक भी बहुत हाई लेवल का कमेंट था, ये बहुत ही एक तरह से अपमानजनक शब्द थे ये। उसके आगे जाकर उसने फाइनल बात बताई, बोलते जिंदा आने के बदले अगर आप वही मर जाते तो अच्छा था। दशरथ को देखो, उसने प्राण त्याग दिए, और ऐसे एक बोलकर, अभी उसने भी बहुत कठोर बात कही ना, तो वो भी गिर गई, वो भी भाव में बोल रही थी सब कुछ, उसने विरह को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। रूप गोस्वामी इसको वर्णन करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, कि क्रोध में प्रेम, लव इन एंगर, लव इन चैस्टाइजमेंट, ऐसे सब बहुत सारा वर्णन करते हैं। उसके अंदर ये वर्णन आता है कि प्रेम में प्रेमी गुस्सा भी करता है प्रेमी के ऊपर, और कठोर वचन भी बोलता है, तीखे वचन भी बोलता है। तो पहले तो बताया कि वो श्रेष्ठ प्रेमी है, उसके बाद में बोलती है कि अगर आप मर जाते तो कम से कम समझती कि आपको, आपको कृष्ण के बलराम के ऊपर प्रेम है, लेकिन आपको तो प्रेम ही नहीं है उनके ऊपर, कैसे पिताजी हम, ऐसे बोलकर खुद को ही उसको सहन नहीं होता कि मैंने क्या बोला उनको, और वो बेहोश होकर गिर जाती है। नंद बाबा शांत बैठकर सुन रहे हैं सब, वेरी मैच्योर, उनको उल्टा जवाब नहीं दे रही, वो भी जानती है कि मेरी पत्नी कितनी महान भक्त है भगवान की, कितनी महान प्रेमी है, क्या भावना है उनकी, उसका आदर करते हुए शांत सुन रहे हैं वो, क्योंकि कभी कभी कुछ बोलने से फायदा नहीं होता है, इज अप्रिशिएटिंग, वो शांति से उसके वचन सुन रहे हैं जो उसको बोले जा रहे हैं। बाद में बोलना बंद हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसको संवारते हैं, होश में लाते हैं, फिर वो बैठ जाती है, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, यशोदा मरना तो बड़ा आसान था, अगर मरना ही होता तो मैं कब का वहां पर मर जाता, उसी समय प्राण त्याग देता। लेकिन यशोदा तुम्हें और मुझे दोनों को जीना होगा, क्योंकि उसने मुझे जाते वक्त कहा था कि मैं इनका कर्तव्य पूरा करके लौट के आऊंगा, इसलिए हमें जिंदा रहना होगा। क्योंकि अगर हम मैं मर जाता उसके बाद आप अभी प्राण त्याग देते, और अगर वो आ जाता बलराम जी को लेके और हमको दोनों को पाता कि हम दोनों नहीं रहे, तो उस पर क्या बीतेगी। इसलिए यशोदा हम दोनों को जीना होगा, कैसे भी हो हमको जिंदा रहना पड़ेगा, हमारा जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टमय होगा फिर भी हमको जीना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि वो आएगा, जो आएगा तब उसको दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें चाहे पहाड़ जैसे दुख हो अनंत सालों के लिए हो, फिर भी क्योंकि उसने कहा है वो आएगा, उस समय तक हमको जिंदा रहना पड़ेगा। ये नंद बाबा का प्रेम है। तो ये नंद बाबा का जो वात्सल्य है ना, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए वो नंद बाबा हैं, इसलिए कृष्ण भगवान उनके बालक बन के जन्म लिए हुए, साधारण व्यक्ति नहीं है वो, उनकी प्रेम के कोई मतलब, ये भी एक परिसीमा है प्रेम की। हम सब लोग प्रेम करते हैं किसी के ऊपर क्योंकि हमको भी प्रेम मिलता है उसके रिटर्न में, है ना, पर हम भी प्रेम करना बंद कर देते हैं अगर कोई सामने वाला व्यक्ति प्रेम करना बंद कर देता है तो हम भी बंद कर देते हैं। माँ करती है, माँ भी एक पराकोटि की प्रेमी व्यक्ति होती है, बच्चा भूल जाता है कुछ भी उनके खिलाफ गुनाह करता है फिर भी माँ उनको भूल नहीं सकती है, उसका प्रेम वैसे रहता है बालकों के प्रति। लेकिन आमतौर पर जो बाकी रिश्ते होते हैं वो सब डिपेंड्स ऑन रेसिप्रोकेशन, अगर नहीं है तो हम लोग भी बोले ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो उसको, दिल पे पत्थर रखे उसको भूल जाते हैं। लेकिन ब्रज का प्रेम जो है, जो नंद बाबा यशोदामय करते हैं, वो प्रेम कैसा है कि चाहे उस प्रेम को करते हुए हमारे ऊपर अनंत संकट क्यों न आए, जिस व्यक्ति पर प्रेम कर रहे हैं उसकी तरफ से हमारे लिए काफी कष्ट क्यों ना आए। अभी वो जानबूझ कर कष्ट नहीं दिए, लेकिन नहीं आया ना कृष्ण, वो नहीं आया इसलिए कितने कष्ट हो रहे हैं, कितनी पीड़ा हो रही है, आने को कितना समय लगा, जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन कितने दिनों के बाद में धीरे धीरे चलकर आए, क्योंकि पैर नहीं उठ रहे थे उनको, कैसे मुंह दिखाऊं यशोदा का, तो कष्ट तो हुआ ना। लेकिन उसके बाद में ज्यादा कष्ट हुआ उसके बिना जीने की वजह से, वो नहीं है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी चाहे मुझे कितने भी कष्ट हो, अगर मेरे जीवित रहने से उसे खुशी मिलेगी तो मैं कष्ट भोगने को तैयार हूं। अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम का अर्थ क्या है, हम लोग रोज गाते हैं भक्ति वेदांत में, क्या अर्थ है उसका, कि आप हमें चाहे आपकी इच्छा हो तो कुचल भी सकते हो, कुचल दो हमें आप, नष्ट कर दो, कुचलना का मतलब कुछ भी नहीं रहना, जैसे मिर्ची को आप कुचलते हो ना तो मिर्ची मिर्ची रहती नहीं, तीखी रहती है, लेकिन वो पेस्ट बन जाती है उसका, मिर्ची का जो अस्तित्व है खत्म हो जाता है वो, उस तरह से कुचल दो हमें, अस्तित्वहीन कर दो, चलेगा। या आपका मन करता है तो गले लगा लो, प्रेम कर लो, या तो अपना बना लो, अपना ऐसे कहो, या तो ठुकरा दो, प्यार करो या ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, मैं सब विधि शरण तिहारी, आ जाओ गिरधारी, वही श्लोक का अनुवाद है ये हिंदी में। अश्लिष्य वा पादरता पिनष्टु माम, पादरता मतलब पैर के तले कुचल दो, अदर्शनम दर्शन मत दो, हृदय को भंग करो, मर्म हताम करो तुवा, हृदय को भंग कर दो हमारे, जो चाहे वो आप कर सकते हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार चाहे जैसी गति चाहे वैसे आप कर सकते हो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव नापरहा, हम हमेशा आपके दास बने रहेंगे और आप हमेशा हमारे लिए आराध्य परमेश्वर बने रहेंगे, आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे, वो हमारे आपके लिए आराध्य प्राणेश्वर बन के रहना कभी बंद नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, कभी समाप्त तो नहीं होगा। ये जो पराकोष्ठी का प्रेम है ना, इसको चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में क्रांतिकारी संप्रदाय कहते हैं। कौन सी क्रांति है? इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ दे रहे हो प्रेमी को। यह क्रांतिकारी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को कहा गया है, इसी के लिए कहा गया है कि रिटर्न में आपको कुछ भी मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर करना है। और यह अवस्था गोपियों की थी। मैंने पहले भी आपको बताया उधर खड़े होकर कि गोपियां भी क्यों नहीं गई मथुरा, कि उनको श्रद्धा थी कि आएंगे। और उनको कब एक एक बार पीछे प्रश्न भी पूछा गया था कि आप चाहती तो हो मर जाना, लेकिन मर तो नहीं रही हो। उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था वो आएंगे, और हम सब लोग अगर मुर्दा पाएंगे तो फिर वो उसके पर क्या बीतेगी, इसलिए हम भी उसलिए जिंदा हैं। लेकिन जिस प्रकार से इत्मीनान से कठोर वचनों का आघात सहन करते हुए शांति से नंद बाबा ने सब कुछ सहन करके जिस प्रकार से बताया यशोदा को, वो समझाया इस बात को, तो यशोदा भी होश में आ गई, ये बात सही है। मतलब दशरथ जी का भी एक प्रेम था, उन्हें प्राण त्याग दिए, लेकिन नंद बाबा का प्रेम उससे भी ऊंचा है, उन्हें प्राण त्यागे नहीं, यही उनका प्रेम है। राम पर क्या बीती जब उसने सुना कि बाबा चले गए, दशरथ महाराज चले गए, राम तो वही गिर गए तुरंत जब उन्होंने खबर सुनी। इतने दुखी हुए हो कि मेरे जाते ही बाबा ने प्राण छोड़ दिए, तो राम जी को दुख हुआ ना। वो भी दुख हमारे कृष्ण बलराम को नहीं होना चाहिए, इसलिए मरने की इच्छा होने पर भी जीवित रह रहे हैं। तो इसलिए हमको इनको बार बार अनंत बार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेम बहुत पराकोटि का प्रेम है। हम तो केवल बैठ के ही बोल सकते हैं, बाकी पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा जरूर ले सकते हैं। तो ये नंद बाबा और यशोदा माई इतने आतुर रहते कृष्ण के लिए, ऊपर रह नहीं सकते वो। उन्होंने 112 साल कैसे निकाले उनको ही पता है। उनको दिन का विरह भी सहन नहीं होता था, जब वे गौ चराने जाते थे तड़पते थे घर पे बैठ के, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो ऐसी सुंदर जगह है। तो फिर ये इस लोगों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा वहां से। तो वो जगह यहाँ पर है, उद्धव क्यारी, हम लोग यहाँ ही उसकी कथा करेंगे। जब उद्धव जी आए ना, तो उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, मतलब बड़े विद्वान थे वो, सब ज्ञान था उनको, योग का हर चीज का ज्ञान था वो। और भगवान के चचेरे भाई भी थे, भगवान के मित्र भी थे, भगवान के मंत्री भी थे, भगवान के क्या नहीं थे वो, भगवान के सब कुछ थे भगवान। तो भगवान ने उनको, मतलब उद्धव की स्थिति ऐसी थी कि हम आप जैसे कोई भक्त अगर विचार करेंगे ना, तो उससे ऊंची कोई स्थिति नहीं हो सकती। जो भी कृष्ण के साथ आप हो सकते हो वो सब कुछ था, फ्रेंड था, मंत्री था, ऑफिशियल अनऑफिशियल, खाना पीना बैठना उठना शिकार खेलना, जो भी जितने भी काम थे वो सब उद्धव जी भगवान के इतने निकट रहकर हमेशा करते थे। लोग भी समझते थे कि उद्धव जैसा भक्त द्वारका में मथुरा में कोई नहीं है, इतना भगवान के साथ निकट कोई भी नहीं है। एक तो पत्नियां हैं वो बात अलग है, लेकिन उद्धव जैसा भक्त जो है वो इतना निकट का और प्रिय भक्त पूरे द्वारका में कोई नहीं है। उसके लिए भी पता था कि जो स्थान पर मैं पहुंच चुका हूं उसके ऊपर कोई स्थान नहीं है, और देयर इज नो अदर प्रमोशन। देखा, समझो आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपकी प्रमोशन क्या हो सकती है, ऑलरेडी नो हाईएस्ट पोजिशन। तो कृष्ण भक्ति में और क्या ऊंची स्थिति हो सकती है। तो कहते हैं कि उद्धव जी को इसके आगे का पाठ पढ़ाने के लिए कृष्ण ने गोपियों की पाठशाला में भेज दिया। ही वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम द्वारका, ही वॉन्टेड टू डू PhD फ्रॉम वृंदावन, तो उनको वहां से इधर भेज दिया प्रेम की पाठशाला में। बड़े ज्ञान के पंडित थे वो, लेकिन ज्ञान के पंडित को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने वृंदावन भेज दिया। बहाना था कि आप बहुत रो रही हैं गोपियां, आप खत लेके चलो उनके लिए। तो ये बड़े विद्वान थे, वैसे बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको पता था कि दुखी लोगों को कैसे का परामर्श देना है, कैसे सलाह देनी है, कैसे उनको शांत करना है, सब मालूम था उनको। तो वो जैसे कि आप समझो आपको कोई विजिट पे बुला रहे हैं, विजिट पे डॉक्टर को कॉल आता है रात को, तो कॉल में पूछते क्या हो रहा है उसको, तो बोले चेस्ट पेन हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, इधर थोड़ी दवाई तुरंत बटोर लेता है और वो सोचते हुए निकलता है कि मुझे क्या करना है वहां जाके, इज प्लानिंग वॉट टू डू. वैसे ये निकला, वो सोच रहा था कि गोपियां बड़ी दुखी हैं क्योंकि उनका प्रेमी जो है वो छोड़ के चला गया है. सिंपल सिंपल डायग्नोसिस, हार्ट ब्रेक. क्या कहते हैं उसको, ब्रेकिंग, व्हाट इज कॉल्ड, प्रीच, हार्ट ब्रेक ना, हार्ट ब्रेक. तो उसके लिए हम उनको योग सिखाएंगे, सुख दुख के परे ले जाएंगे, हाँ, प्राणायाम सिखाएंगे, नाक वाक बंद करके हाथ पर मुद्रा वुद्रा करके उनके प्राणों पर नियंत्रण करेंगे. प्राणों का नियंत्रण होगा तो आयाम होगा, आयाम से मन नियंत्रण होगा, दुख दर्द मिट जाएंगे, शांत कर देंगे उनको. जैसे आए ना, तो पहले यमुना कह रहा था, यमुना किनारा इस तरफ गोकुल है, मथुरा से आए थे वो, द्वारका से नहीं आए थे, मथुरा से आए थे. तो पार किया तो सब गोपियां यमुना की रेत पे बैठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, ऐसे योग कर रही हैं, ऐसे ऐसे बैठे. तो उनको लगा अच्छा है, कुछ बेसिक लेसन मालूम है उनको योग के, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है. आई डोंट वांट टू टेक फ्रॉम एबीसी, यू नो. तो उन्होंने पूछा फिर क्या ध्यान कर रही हो आप. योग में कैसा होता है कि जो भगवान को हम अपने हृदय में पकड़ नहीं सकते हैं, उनको योग द्वारा हम लोग पकड़ते हैं और उनका उनको हृदय में स्थिर करने का प्रयास करते हैं. जो हृदय में नहीं है उनको हृदय में बसाना और उनको स्थिर करना और उन पर ध्यान करने का प्रयास करते हैं. तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया, हमारा हृदय था ना बहुत सिंपल था पहले, और ये कृष्ण जो है ना बहुत टेढ़े थे. तो जब इनका हमारा प्रेम हुआ तो टेढ़े भगवान को हमारे सीधे हृदय में घुसाना बहुत मुश्किल था, तो हमारा हृदय हमने टेढ़ा कर दिया उनको फिट करने के लिए. तो अभी ये टेढ़े भगवान ऐसे हृदय में फंसे हुए हैं, हम योग करके उनको हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं. कि हमारा सादा हृदय हमने टेढ़ा करने की वजह से इनको बाहर निकालना में मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोग योग कर रहे हैं. तो ये योग तो सीखा नहीं था उसने, ही हैज नॉट लर्न दैट योगा. उनके कई शास्त्र में ऐसा योग का वर्णन नहीं था जो ये लोग कर रहे हैं. तो उधर ही वो पहले ही विकेट गिर गई उसकी, पहले ही मतलब उसके ज्ञान का घमंड उधर ही उतर गया. ये कैसा अजीब अजीब विचार है, ये लोग तो नहीं प्राप्त हुए कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए योग करते, तपस्या करते, त्याग करते, सब कुछ छोड़ के जाते हैं, और ये कृष्ण उनके हृदय में बसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए योग कर रहे हैं. ये कल्पना भी उनके लिए टॉलरेबल नहीं थी. तो बोले पहले नंद बाबा से मिलते हैं, इसलिए वो नंदगांव आए. नंदगांव आए तो अभी कैसे चैतन्य महाप्रभु पूछा कि कोई यहाँ पर है क्या, ऐसे मूर्ति कोई है क्या, पूछताछ करते आए ना, ये पूछताछ करके आए, नंद बाबा कहाँ रहते हैं, यशोदा कहाँ रहते हैं. तो ऐसे ना क्या देख रहा है मन में, वो इनका संवाद हो गया और आगे चला गया. तो गाय जैसे सब लोग चित्रपट जैसे खड़ी है, लाइक ब्लैंक चित्रपट, नो मूवमेंट, नो ब्रीदिंग मूवमेंट ऑल्सो, स्तब्ध खड़े हैं चित्रपट जैसे, मानो ऐसा मूर्ति है कि सही है कि जीवंत है कि मर गए पता नहीं. पेड़ भी ऐसे ही सूखे खड़े हैं, पंछी भी खड़े ऐसे, कोई बोल नहीं रहे, सूखे हुए पंछी ऐसे दुबले पतले हो गए हैं, प्राणी भी ऐसे ही है. ऐसा नज़ारा देख देख के नंदगांव पहुंचे. वहां पर ऐसे आदमी मिले नंदगांव के, ऐसे चित्रपट जैसे, जैसे जीव जीव आयुष क्या कहते हैं, जीवन है लेकिन निर्जीव लग रहे हैं, ना आंखों में जान है, ना चेहरे पर कोई तेज है, कोई जिसते चेहरे सब ऐसे जैसे कि मरने ही वाले, बस ऐसे कैसे कैसे जिंदा है, इस तरह के व्यक्ति मिले. उसमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, नंद बाबा से मिलना है, ये दो नदियाँ आ रही ना यहाँ से, इसके किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन पहुँच जाओगे. तो वो नदियों के किनारे किनारे चले गए, चढ़ते चढ़ते ऊपर आगे देखा तो बहुत बड़े भव्य दरवाजे हैं नंद भवन के, उसमें से दो नदियाँ आ रही है. तो खोल के अंदर गए तो क्या देखा, नंद बाबा रो रहे हैं, उससे एक नदी बह रही है, यशोदा रो रही है, उससे एक नदी बह रही है, वो कंटिन्यूस नदी बह रही है. और वही नदियाँ थी जो नीचे उन्हें बताया कि इसके किनारे किनारे चले जाओ तो उनकी मुलाकात होगी. उधर दंडवत किया उनको, क्या ऐसा प्रेम ऐसा विरह तो देखा नहीं कभी. फिर खत दिया तो बहुत सारा संवाद हो गया उसमें, क्या हमें याद भी करता है वो, क्या कोई लोरी भी गाता है उसके लिए, कैसे ना सब सुन रहे हैं वो. एक स्निग्ध कांत और मधुकांत नाम के गोप थे, वो हमेशा जाके खबर सुनाते थे क्या चल रहा है वहां पर, उनको अपडेट मिलता रहता था. लेकिन फिर भी समझो आप अभी अपने गांव जा रहे हो जहां पर आपका बचपन बीता है, तो वहां पहुंचने के पहले ही ऑलरेडी छोटे बन जाते हो आप, यू बिकम ऑलरेडी स्मॉल इन माइंड, बॉडी इज नाउ 40-50 ईयर ओल्ड, लेकिन गांव जहां पर आपका बचपन बीता है वहां जाने के विचार से ही आप बालक बन जाते हो, और वहां पर जाकर भी ऐसी बातें करते हो जैसे आप बालक ही हो। और माता पिता के भी ऐसा होता है, बालक कितना भी बड़ा हो जाए उनके मन में वही छवि थी जो वृंदावन से निकल कर मथुरा गई थी। उनको ये नहीं पता कि अभी राजा बन गया, ये हो गया, अभी बहुत थोड़ा काम किया उसने, तो वो क्या पूछ रहे हैं उनको, उनको कोई माखन भी खिलाता है क्या, कोई लोरी भी सुनाता है उसको, हमारी याद आती है उनको, ऐसे सब प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि एक हंसी मजाक जैसे प्रश्न पूछते हैं। नाउ ही हैज ग्रोन अप, ही इज बिकम अ मैन, तो उनको बचपन जैसे प्रश्न पूछते हैं उनके बारे में। तो ये उनका प्रेम देखकर भाव विभोर हो रहे हैं, बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, क्या बताना है उनको। उसके बाद में ये गोपियों को मिलने जाते हैं, उनका प्रेम देखकर हैरान हो जाते हैं नंद नंद बाबा और यशोदा माई का। तो गोपियों को जब मिलते हैं नंदगांव में, तो नंदगांव कहते हैं कि हम लोग आपको यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं मिल सकते आपको, वो प्राइवेट जगह में मिलना है आपको। पहले था जब वो आता है ना रथ पे बैठकर, तो सब गोपियां भाग के आती हैं, कृष्ण आए कृष्ण आए, क्योंकि उद्धव जी का शरीर भी कृष्ण जैसा था, उनका रंग और उनका रूप भी कृष्ण के जैसा ही था, और कृष्ण भगवान ने जानबूझ के अपने ही रथ पे उसको भेजा था। तो कृष्ण का रथ है, कृष्ण ही आ गए, भाग के आते हैं, जब पास में आते हैं दिखता है कि ये कृष्ण नहीं है, तो झट से संकोच से पीछे हट जाते हैं। और जब वो उनको मिलने आते हैं खबर देने के, खत देने के लिए, तो कहते हैं कि हम आपको एकांत में मिलना चाहते हैं, हम अपना भाव यहाँ नहीं व्यक्त कर सकते। तो उनको उद्धव क्यारी ले गए, वो उद्धव क्यारी ले गए एकांत में, जंगल में एक आसन बनाया, उनको बिठाया, और फिर उन्हें बोलना शुरू कर दिया। जैसे उन्हें बोलना शुरू कर दिया ना, उद्धव जैसे पागल जैसा हो गया, क्योंकि एक एक गोपी, एक समुदाय, देहरादून गालियां दे रहे कृष्ण भगवान को, वो ऐसा व्यक्ति है उसको कोई प्रेम नहीं करना चाहिए, बहुत क्रूर व्यक्ति है, क्यों हम लोग ने उसको प्रेम किया, हमको सब तो कभी प्रेम नहीं करना चाहिए था, ऐसा दुष्ट प्रेमी है वो, उसको तो कभी प्रेम करना ही नहीं चाहिए, हमने हम तो पागल लड़कियां थी जो उसको प्रेम में गिरी, इसलिए हमारी ये अवस्था हो गई है। ऐसे कुछ गालियां दे रही हैं, तो कुछ उनका गौरव किया जा रही है, तो कुछ हंस रही है, तो कुछ रो रही है, कुछ बेहोश हो रही है, कुछ नाच रही है, ऐसे पागलों की तरह विरह में। तो ये सब देखकर वो हैरान हो गया, ये भाव कभी दिखा नहीं था, इसको मैं कैसे इलाज करूं, कौन सा परामर्श दूं इनको, कौन सी सलाह दूं, कैसे काउंसलिंग करूं इनका, दंग रह गया वो तो चुप ही हो गया पूरा, मतलब जो जो सोच के आया था ना वो सब डिलीट होते गया उसके माइंड से, कि ये भी बेकार है, जो आप इंजेक्शन लेके गए बोले ये भी नहीं चलने वाला है, अभी ये भी चलने वाला नहीं है, सारी जो सोच के आया था सारी बैग खाली हो गई उसकी, यूजलेस हो गई उसकी, जितना बटोर के आया था ज्ञान सब जीरो हो गया उधर, एकदम ब्लैंक हो गया वो कंप्लीटली। और सोचने लगा कि मैं क्या करूँ अभी, इनको कैसे समझाऊँ, कैसे उनका दुख दूर करूँ, ऐसे दुविधा में पड़ गया वो उद्धव। कितना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, इतना भगवान का क्लोज डिवोटी, लेकिन यहां पर पूरा ना भ्रमिष्ट हो गया वो पूरा, ही बिकेम टोटली कंफ्यूज एंड बिविल्डर्ड। लेकिन क्योंकि उसकी प्रामाणिक इच्छा थी कि मैं गोपियों को सही रूप में सांत्वना दूंगी, वाज रियली डिजायरिंग कि आई शुड हेल्प देम, जिसी भी तरह से उनको हो सके मैं मदद करना चाहता हूँ उनकी अवस्था में, उसकी ये प्रामाणिकता थी, इसलिए उसको एक रास्ता दिखा। क्या दिखा रास्ता, कि ये गोपियाँ बीच बीच में कृष्ण की कहानियाँ बताती थी उनको, कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर हमने ऐसा किया फिर हमने ऐसा किया। तो उसने देखा गौर से कि जब ये गोपियाँ कृष्ण के विषय में कुछ कहानियाँ बताती है तब ये दुख भूल जाती है और एकदम खुश हो जाती है। तो वही क्लू पकड़ा उसने और उनको उन्होंने प्रेरणा देना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो उसके उत्तर में सब गोपियों ने सारी कहानियां बताना शुरू कर दिया। अभी क्या बताया उसने, चलो हमको वहां चल, आपको ले चलते हैं वहां पर क्या हुआ बताते हैं। तो उनको वहां ले गए, वहां की कहानी बताई, फिर उन्हें और कुछ पूछा, बोला चलो आपको आगे, हमने कैसे बोला, हम कहाँ जाते हैं, सब नंद बैठे जाते हैं, वहां पर क्या हुआ बताते हैं, फिर और कहाँ गए वहां पर क्या हुआ। और जैसे ही उसने उनको प्रेरणा देना शुरू किया, वो इतनी प्रेरित हो गई कि उन्होंने 6 महीने तक उद्धव को पूरा ब्रज घुमाया, 6 महीने तक। कैसी अद्भुत यात्रा थी देखो, यहाँ पर एक आदमी कथा कर रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, उधर करोड़ों गोपियां कथा कर रही है और एक एक श्रोता सुन रहा है। वास्तव में हकीकत थी, क्योंकि सबको बोलना था, समझो अभी समझो एक लीला हुई, हाँ तो लीला के सब पार्टिसिपेंट थे उधर, तो आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, आपका अनुभव क्या है, वो अपनी तरफ से बोल रहा है, तो सब वही कथा वही है, लेकिन सब लोग अपना अपना बता रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय एंगल ऑफ व्यू, और हर एक का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, किसी ने कृष्ण को बाएं से देखा, किसी ने राइट से देखा, सामने से देखा, तो अलग अलग उनका अनुभूति है भगवान से, किसी ने प्रत्यक्ष सेवा किया, किसी ने अप्रत्यक्ष सेवा किया उसी लीला में, तो एक कथा में सभी लोगों को कुछ ना कुछ कहना है अपना अपना, तो कैसी कथा होगी वो सोचो आप। तो उद्धव जी ने देखा कि ये बेस्ट तरीका है, हो सकता है ये मेरा तरीका नहीं है, ये उनका ही तरीका है, लेकिन अगर मुझे सही में उनको अगर सांत्वना देनी है तो उनको मुझे प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए गया था वो, लेकिन 6 महीने तक वो ब्रज में रहा केवल गोपियों को रिझाने के लिए कि भाई रिझ रही है तो रिझने दो, मैं सुनने को तैयार हूं, भले मैंने जो सोच के आया था उसमें से एक भी काम नहीं आया तरीका, चलेगा। नम्रता से उसने स्वीकार किया, इतना पंडित बुद्धि वाला काम व्यक्ति था वो, लेकिन बुद्धि को भी उसने विराम दिया, कोई बात नहीं, गोल क्या है, मेरे तरीके से ठीक हुआ मरीज, ये गोल नहीं है, मरीज ठीक होना चाहिए, दैट इज रियल डॉक्टर, मेरे ही पैती से ठीक हुआ ये जरूरत नहीं है, मरीज को आराम मिला ना बस मेरा काम हो गया, उस तरह से कुछ सोच के आया था उसको त्याग करके उसने उसको वैराग्य कर दिया उसने पूरा उसके प्रति, और जिस तरीके से उनको सांत्वना मिल रही है वो सांत्वना उनको देते रहा वो। इसलिए नम्रता से 6 महीने उनके साथ में पूरा ब्रज का चप्पा चप्पा छान मारा उसने और सबकी कथाएं सुनी। उसके बाद वो जब लौटने लगा, जब उसके मन में ऐसा विचार आया, मतलब पहले से ही आ रहा था जब ये उनके साथ में था, कि ये गोपियां, मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे भगवान के पास में हूं और ये गोपियां भगवान से इतनी दूर हैं शरीर से, लेकिन मुझसे करोड़ों गुना अधिक भगवान के पास में आएगी, भावना से हृदय से भगवान से करोड़ों गुना अधिक निकट है ये, इनकी निकटता का मैं अंदाज नहीं लगा सकता कि ये कितनी निकट है भगवान की। अब मैं सोच रहा हूँ मैं भगवान से गले मिलता हूँ, रोज भोजन करता हूँ, साथ में बैठता हूँ, उठता हूँ, शिकार खेलता हूँ, दिन रात उनके साथ में रहता हूँ, लेकिन मैं कितना दूर हूँ भगवान से इनके सामने। तो उनको लगा कि गोपियों की चरणों की धूल लेनी चाहिए, तब जाकर इनके भाव का रहस्य का बीज मेरे हृदय में प्रवेश कर सकता है। लेकिन उद्धव तब तक इतना नम्र हो गया था कि उद्धव के मन में ऐसा विचार आया कि मैं तो राजा हूं, अभी भी राजा ही हूं ना, मतलब राजा का प्रतिनिधि हूं, रॉयल मैन फ्रॉम रॉयल डिनेस्टी, और भगवान का प्रतिनिधि बनकर आया हूं, रथ पे बैठकर आया हूं, मुकुट पहनकर आया हूं, राजवस्त्र पहनकर आया हूं, आई हैव कम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी एज अ ऑफिशियल पर्सन, मेरा अपना एक पोजीशन है इनके आंखों के सामने, ये मुझे सम्मान कर रही है, अगर मेरे पोजीशन से भले मैं कितना नम्र हो गया हूं लेकिन मेरे पोजीशन से अगर मैं उनको कहता हूं कि मुझे आपके चरण छूने हैं तो वो संकोच करेंगी, उनको संकोच होगा, तो मैं उन्हें संकोच भी देना नहीं चाहता। इस 6 महीने की ब्रज परिक्रमा में मैं देख रहा था कि इनको घास के पत्तों पर चलने में कोई संकोच नहीं है, ये आराम से चलते रहते हैं, जब भी मैं चलता रहा तो ये भी चलते रहे, मैं भी चलता रहा, तो घास के पत्तों पर चलने में इनको कोई संकोच नहीं है। तो अगर मैं इनके चरणों के रथ चाहता हूं तो मैं घास का तिनका तिनका बनूंगा ताकि तिनके पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सहजता से उनके चरणों की रज मेरे शीश पर गिरेगी अगर मैं तिनका बनू जाऊं तो मन में उसने डिसीजन ले लिया कि अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, ना उनसे मांगूंगा परमिशन रज लेने के लिए, कुछ भी नहीं बोलूंगा, जाऊंगा भगवान को रिपोर्ट दूंगा, बहुत लेट हो चुका है, 6 महीने हो गए अभी जाना चाहिए, जाऊंगा और फिर लौट के आऊंगा और फिर तपस्या करूंगा। उद्धव जी का चरित्र इतना श्रेष्ठ है, चरित्र इतना श्रेष्ठ चरित्र है कि पूरे पौराणिक इतिहास में जब से भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है तब से आज तक केवल 2 ही व्यक्तियों ने तपस्या ऐसी की है जो टॉप पोजीशन पे थे और वो एकदम लोएस्ट पोजीशन में आ गए उसके बाद में, इनफैक्ट टॉप पोजीशन से लोएस्ट पोजीशन में आने के लिए उन्होंने तपस्या किया है। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा है, सृष्टि के प्रथम रचयिता नागरिक है वो, इतने टॉप पोजीशन से वो पत्थर बने यहां पर बरसाने में आके। पत्थर बनने का मतलब क्या है? मिस्टर नोबडी, यू बिकम मिस्टर नोबडी, यू हैव नो पर्सनैलिटी। लोग चलेंगे आपके ऊपर, टट्टी पेशाब करेंगे, थूकेंगे, बंदर जानवर सब कुछ जो करना है, नंगे पैर चप्पल पहन के जूता पहन के क्या नहीं करते हम पत्थर के ऊपर। ऐसी स्थिति उन्होंने स्वीकार की, न्यूनतम स्थिति। और उद्धव जी भक्ति के विषय में भगवान से इतने निकट पहुंच गए थे, इतने उच्च पद पे पहुंच गए थे, तो उस पद से एक गर्व की बात है ना कि मैं भगवान से इतना क्लोज हूं, वो छोड़कर, भगवान का सानिध्य छोड़कर, जो रोज का था ना प्रिविलेज, जो भाग्य था उनका, वो सब कुछ छोड़कर वो ब्रज में आए, वो ना गोपियों के पास डोल रहे हैं ना भगवान के पास में है, तपस्या करके तृण का पत्ता बनने का कोशिश कर रहे हैं। और तृण का पत्ता बने वो गुलबलता नाम का, और गोपियों को चरणों के रज प्राप्त किए उन्होंने। और आज भी वो, क्योंकि वो चिरंजीवी है ना, वो जैसे अश्वत्थामा है, जैसे हनुमान जी है, विभीषण है, वैसे वो चिरंजीवी है, तो आज भी वो कुसुम सरोवर पे गुलमलता नाम के तृण के पत्ते के रूप में विराजमान है, वहीं रहते हैं वो, उसी भाव में रहते हैं। ऐसा कोई नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। वो उद्धव जी हैं, उद्धव जी का कितना गौरव है, 11वें स्कंद में उनका कितना सुंदर वर्णन, कितने सुंदर प्रवचन महाराज ने दिया उद्धव जी के व्यक्तित्व के बारे में। उद्धव जी का व्यक्तित्व है ना PhD करने लायक है, एक एक उनके व्यक्तित्व के जो पहलू है ना वो समझने लायक है कि ऐसा भक्त ऐसे होना चाहिए। सारा घमंड उसने छोड़ दिया और भगवान का भी हेतु सफल हो गया। उद्धव जी को भी एक अनुभूति हुई कि मैं सबसे निकट नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, करोड़ों की संख्या में रहते हैं ब्रज में, जो मुझसे इतने निकट हैं, मैं उनको एक क्षण भी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा है उद्धव जी को कि मैं एक क्षण तक, एक क्षण भी मैं ब्रजवासियों को भुला नहीं सकता, मुझे मुझे पिताजी की आन है, नंद बाबा की आन है कि मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता किसी भी कीमत पर। उद्धव जी को उन्होंने कहा, गोपियों ने, अरे उद्धव हमारे पास बस 10-50 मन नहीं है, एक ही मन था जो उसको हमने दे दिया, अभी हमारे पास मन ही नहीं है, और किसको दे मन और कहाँ रखे उसको, हमारे पास मन ही नहीं है, मन तो उसके पास में है, वो दो ना 10-20 क्या है उसका लिखा है, हाँ मन ना भय 10-20 ऐसे श्लोक है ब्रज भाषा में, ऐसा भाव था उसका। तो पक्का ब्रजवासी बन गया वो भाव से। सब प्रणाम करो यहाँ ही बैठकर उद्धव जी को, हृदय से प्रणाम करो। हम भी उद्धव जैसे ही हैं, शहर से आ रहे हैं, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मेरा इतना वेल्थ है, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ, ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारी पावर है, ये हमारा ऐश्वर्य है, ये सब अनेक टोपियाँ पहनकर हम लोग यहाँ पर आते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर कि लोग, इनके पास तो कुछ भी नहीं है जो हमारे पास में, लेकिन जो इनके पास में है वो हमारे पास नहीं है। आपने कहा था ना, जो इनके पास है वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है वो हम धन से खरीद सकते हैं, लेकिन जो इनके पास है वो हम धन से खरीद नहीं सकते, कितना भी पैसा उड़ाएंगे तो इनके पास में जो है वो हमारे पास नहीं है। ये बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ये शहर में रहकर नहीं आपको आएगा समझ में, आपको ब्रज में आना पड़ेगा और ब्रजवासियों को निकट से देखना पड़ेगा उनका व्यवहार क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान इतने पागल क्यों थे इनके पीछे, इतने दिन रात उनका नाम जपते थे वो, रानियों के साथ रहते हुए भी। तो ये ब्रजवासी में एक आपकी कहानी बताऊंगा अंत में, बिफोर आई एंड, हमारे महाराज जी ने हमको बताई थी कि ब्रजवासी कैसा होता है जो यहाँ पर जन्म लेके यहाँ पर जीवन बिताता है। तो एक डाकू था, अभी अभी की बात, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 50-60 साल के पहले की बात है, वो ब्रजवासी था, वो इतना खूंखार था, वो इतना क्रूर दुष्ट था कि किसी को जिंदा ख़त्म कर देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, उसको कोई, ऐसे कहते हैं ना, आँख में खून ही नहीं उसके, कोई दया नहीं उसके अंदर, बिल्कुल भी क्रूर था वो। वो इतने उसने गुनाह किए थे, इतने खून किए थे कि पुलिस ने आखिर में उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, देखते ही गोली मारो, जहां भी दिखेगा चलाओ गोली उसके ऊपर। फिर भी वो नहीं मिला किस पुलिस को, लेकिन एक दिन पुलिस एनकाउंटर में उसको गोली लगी, वृंदावन में, सीने में। जब उसको सीने में गोली लगी तो वो सीधे बांके बिहारी के मंदिर में गया और बांके बिहारी को देखते उसने चार प्राण छोड़ दिए। सोचा, उतनी हिम्मत भी थी उसके अंदर, वो इतना खून बह रहा है हृदय से उसके, और पकड़ कर वो बांके बिहारी के मंदिर में गया, फिर होटल में नहीं गया पानी पीने के लिए, है ना, हो सकता है कि प्यास पानी पिलाओ, किधर भी नहीं गया, गोली लगते ही सीधे बांके बिहारी के मंदिर गया, बिहारी जी का दर्शन किया, वही प्राण छोड़ दिए। भागवत भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं बताओ आप मुझे? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मुझे याद करता है। जैसे विष्णुदेव ने भगवान को देख के प्राण छोड़ा, डाकू ने भी जब बांके बिहारी को देख के प्राण छोड़े तो क्या वो सोच के भरा होगा, वो गया क्यों उधर, वो उसमें अंतिम क्षण में भी वहां पर जाने की बुद्धि कैसे उसकी हुई, क्योंकि हृदय के अंदर के कोने में भगवान का प्रेम है, बाकी सब बाहर का हिसाब किताब भगवान देख लेंगे क्या है वो, लेकिन अंदर के प्रेम का कोई चैलेंज नहीं कर सकते, वो है, कितना भी कुछ भी करेंगे लेकिन इनके अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, उसके भगवान उसके सामने अपने आप को बेच देते हैं, भगवान भगवान अपने आप को बेच देते हैं इस प्रेम के सामने, ऐसा प्रेम है ये। तो कुछ कुछ उस उन प्रेमों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये आंखों का कैम का तो बहाना है, हमको इस प्रेम को पाना है इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी सेवा करके उन नज़दीक से देखते हैं उनको, कैसा हृदय है उनका, निष्पाप, सिंपल, यू नो, नो क्रुकेडनेस, नो डुप्लिसिटी, नो कपट। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इसका अनुभव करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और कुछ कुछ समझ में आया तो हो सकता है कि हमारे धन का, विद्या का, पद का, अधिकार का जो घमंड है ना, वो निकल जाएगा, नहीं तो वो उसी में हम लोग जिएंगे और उसी घमंड में मरेंगे एक दिन, और दोबारा आएंगे और घमंड को पैदा करने के लिए, और जब तक ये घमंड है तब तक भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग। इनको मिलके समझ सकते हैं कि ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जिनके पास हमारे जैसा गर्व करने के लिए कोई चीज ही नहीं है उनके पास। देखिए, रूप नहीं है जिस पर गर्व करते हैं, धन नहीं है जिस पर गर्व करते हैं, कोई बड़ा कुल का जन्म नहीं है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई पद नहीं है, कुछ है ही नहीं जिस पर हम लोग गर्व करते हैं, भगवान ने दिया ही नहीं उनको, क्योंकि भगवान उनको ऐसा चीज देना ही नहीं चाहते जिस पर उनको गर्व हो और उनसे वो दूर चले जाएं, उनको हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं, इसलिए उनको ना रूप दिया है, ना धन दिया है, ना बुद्धि दिया है, ना बुद्धि मतलब ज्ञान दिया है, ना एजुकेशन दिया है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल रखा है उनको। लेकिन जो हृदय उनके पास में है वो भगवान बचाना चाहते हैं, लॉर्ड वॉन्ट्स टू प्रिजर्व दैट हार्ट विच इज़ वेरी बिलवेड टू हिम, जो उनको बड़ा प्रिय है उनका हृदय, और उस हृदय को कोई कंटेमिनेशन ना हो इसलिए उनको ऐसे स्थिति में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, और उनको उनकी सेवा करने का भाग्य हमको मिला है, ये हमारा बड़ा पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है, ये अभी फलित हो रहा है, जिसके वजह से ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि भाई क्या है ये, क्या भगवान को मैं सोने का मुकुट पहना के प्रसन्न करूं कि इनके जैसा प्रसन्न करूं। जैसे ब्रजवासी, वो भागवत में वर्णन आता है कि यहाँ पर के हिरने जो ना, हिरने द डियर, वो कहते हैं कि वो केवल भगवान को देखकर नजरों से भगवान की आरती उतारते हैं, ना उनके पास धूप है, ना घंटी है, ना दीपक है, ना कोई घी का लैंप है, कुछ नहीं उनके पास, लेकिन ऐसे वर्णन भागवत में आया है कि वो केवल भगवान को जिस तरह से देखते हैं वो नजरों से ही भगवान की आरती उतारते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात को गोपियां भगवान को सुलाने के पहले चुपके से आके भगवान के चरणों को कुमकुम लगाती हैं। यशोदा भी आश्चर्य करती है, अरे ये कुमकुम किसने लगाया? तो कुछ सखियां बताती है, बड़ी सखियां, कि रात को आके गोपियां लगा के जाती हैं। तो यशोदा कहती है कि मैं तो उसको नहलाती हूँ सुबह, फिर भी कैसे नहीं गया कुमकुम ये? ऐसे उसको प्रश्न पड़ रहा है। उसका उत्तर यह है कि वो तो माधुर्य रस में लगाया हुआ कुमकुम है, वो तो कैसे निकलेगा। तो वो जो कुमकुम है वो पैर में लगा हुआ है और कृष्ण बाहर निकलते घर के, और वो कुमकुम से नंगे पैर वो अभी पृथ्वी पर चल रहे हैं, भूमि पर चल रहे हैं, तो वहां की जो घास है उसको अभी वो कुमकुम लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और वो चल रहे हैं। और ये हिरण जो है उनके पीछे 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 आते हैं और ये घास खाते खाते जाते हैं, जो उनके कुमकुम लगे हुए घास है ना वो खाते हैं, और घास खाकर वो भाव विभोर हो जाते हैं प्रेम से, और वो नज़र से फिर उनको देखकर उनकी आरती उतरते हैं, और भगवान बड़े प्रेम से उनकी आरती स्वीकार करते हैं। ऐसे यहाँ के प्राणी हैं, ऐसे यहाँ के पंछी हैं, ऐसी गाय है, ऐसे बैल हैं, ऐसे सब 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 जीव यहाँ के ऐसे भाव में रहते हैं। यशोदा मैया उनको अपने दांत से चबाकर नरम करके भोजन खिलाती है। ये बताया बताया था आपको मैंने, ये बात बताई थी ना। तो वो प्रेम उनको द्वारका में कहाँ मिलेगा, जाए एवरीथिंग ऑफिशियल, इतना ऐश्वर्य है, इतनी रानियां हैं, क्या प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रेम का ऐश्वर्य वहां पर नहीं है। सब प्रेम करते हैं लेकिन वैसे प्रेम का ऐश्वर्य यहां पर नहीं। एक भगवान को इतना सा सुख देने के लिए अगर वो अनंत साल नरक में भी जाए तो भी गोपियां तैयार हैं। ऐसा प्रेम द्वारका में भी नहीं मिल सकता है, भगवान भी जानते हैं कि नहीं हो सकता है, ये केवल ब्रज में ही होगा। जहां पर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भगवान हूं वहां पर ऐसा प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भगवान जो हूं वो जो ज्ञान है वो उसके बीच में आता है। यू कैन डू थिंग्स, रानियां नहीं कर पाई वो, लेकिन गोपियों को और ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, इसलिए वो किसी भी हद पे जाकर उन पर प्रेम कर सकते थे। उनके प्रेम के मार्ग में इनके भगवान होने के ऐश्वर्य का ज्ञान हो नहीं था बीच में बाधा के रूप में, इसलिए वो ऐसा प्रेम कर सकते थे। तो इसलिए ऐसा प्रेम करने के लिए वातावरण की भी आवश्यकता होती है, यू नीड एटमॉस्फियर। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि बॉम्बे में भी हम लोग कथा कह सकते हैं, लेकिन आपको उतनी समझ में नहीं आएगी ना, उतनी तरह से मैं बोल पाऊंगा। यहाँ बैठ के बोलूंगा तो वो मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अलग होता है थोड़ा सा, इट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर, क्योंकि यहाँ का जो भूमि है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो चेतना है, यहाँ की जो लहरें हैं वो आप पर असर करती है, आपकी आत्मा पर, क्योंकि वो दिव्य लहरें हैं, आपकी आत्मा भी दिव्य है, यहाँ का वातावरण भी दिव्य है। जब आप इस वातावरण में आओगे तो फिर वो जागृत होगा, वहाँ जाओगे मुंबई तो ऐश्वर्य है सब कुछ, भूल भुलैया है, वो आपको प्रभावित करेगा, और कहीं जाएंगे तो वहां का वातावरण प्रभावित करेगा। तो आपको प्योरेस्ट अगर अनुभव करना है तो आपको प्योरेस्ट स्पिरिचुअल वातावरण में आना पड़ेगा, तब वो वातावरण में फिर आपकी आत्मा उस पर प्रभावित हो जाएगी और फिर वो अनुभूतियां उत्पन्न हो जाएगी। जब तक उद्धव जी भगवान के साथ द्वारका में ऐश्वर्य में वातावरण में थे तो ये सारी अनुभूतियां पैदा नहीं हुई, जब बुद्ध को छोड़कर ब्रज में आए, इस रज में आए वो, तब जाकर ये सारी दिव्य अनुभूतियां जो कभी उत्पन्न नहीं हुई थी वो सारी भर भर के अनंत मात्रा में उद्धव ने 6 महीने में अनुभव की। तब वो उद्धव नहीं रहा जैसे आया था, सब टोपियां उतार दी उसने यहां पर आके, और वो दूसरा ही उद्धव बना। भगवान भी उसको देखकर हैरान हो गए, क्या ये मेरा उद्धव है, तो डिफरेंट व्यक्ति है, लेकिन भगवान का उद्देश्य सफल हो गया था उद्धव को वृंदावन भेजने का। तो हमारा भी ऐसा ही है, यहाँ पर हम लोग क्यों आते हैं, उधर भी कैंप करते हैं हम लोग, इधर भी यही कैंप करते हैं, यहाँ पर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर करने से जो अनुभूति मिलेगी वो बंबई में नहीं मिलेगी। इसलिए आपका कम्युनिटी का पोस्टिंग भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हम लोग ने, ताकि कितनी भी कम्युनिटी पोस्टिंग आप बंबई में करेंगे, यहाँ पर आके करेंगे तो आपको जो अनुभूति मिलेगी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, आपकी पूंजी जीवन की पूरी भर जाएगी यहाँ पर आने के बाद में। तो आप सबको बधाई हो, क्योंकि आप रज में आए, भगवान की भूमि में आए, इस रज में आए, इस भूमि रज के कण कण में ये प्रेम के रहस्य छुपे हुए हैं जो उद्धव जी ने अनुभव किए यहाँ पर आकर। तो कभी भी उनको इतने सालों के भक्ति में जीवन में कभी भी अनुभव करने को नहीं मिले थे, ऐसे रहस्यमय अनुभव को उद्धव जी को यहाँ मिले। इसलिए हम उद्धव को अनंत करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा भक्त कोई विरला ही है उद्धव जैसा, विशेष भक्त है वो भगवान का। श्री उद्धव जी महाराज की, श्री नंद बाबा की, श्री कृष्ण बलराम की। भी जाने के पहले जरूर उनके दो पैर जो है ना ऐसे वो देख के जाना। हाँ, हरे कृष्णा।